आप सुन रहे हैं अर्पा रेडियो, प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक शिक्षक दिवस पर शिक्षकों की बात, प्रस्तुति योगेश पांडे की है।
अर्पा रेडियो सुनने वाले सभी साथियों को योगेश का नमस्कार। दीपक सा जलता है गुरु, फैलाने ज्ञान का प्रकाश। न भूख उसे किसी दौलत की, न कोई लालच नास। उसे चाहिए हमारी उपलब्धियां, ऊंचाइयां, जहां हम खड़े होकर उनकी तरफ देखें पलटकर, तो गौरव से उठ जाए सर उनका, हो जाए सीना चौड़ा। हर वक्त साथ चलता है गुरु, करता हम में गुणों की तलाश, फिर तराशता है शिद्दत से और बना देता है सबसे खास। उसे नहीं चाहिए कोई वाहवाही, बस रोकता है वो गुणों की तबाही, और सहेजता है हम में एक नेक और काबिल इंसान को, ऐसे गुरुवर को, ऐसे शिक्षक को। अर्पा रेडियो का शत शत नमन। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों की बात लेकर हाजिर हूं मैं योगेश, आप सभी का स्वागत है अर्पा रेडियो पर। शिक्षक दिवस को यादगार बनाने के लिए हमने आज अपने अंचल के बहुत सारे शिक्षकों से बात की है, जिसे हमने 6 हिस्सों में बांटा है। यह है एपिसोड 2।
मैं हूं योगेश और ये कार्यक्रम है भेंट मुलाकात का विशेष कार्यक्रम शिक्षक दिवस पर। और अभी हम अगला सवाल पूछने जा रहे हैं। शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, IASC से कहते हैं, जो कि एक टीचर एजुकेशन कॉलेज है, वहाँ के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण पोद्दार जी से। डॉक्टर पोद्दार, आपका स्वागत है अर्पा रेडियो में और आपको शिक्षक दिवस की खूब सारी बधाई।
धन्यवाद सर।
आज का दिन शिक्षकों के लिए ही होता है, अर्पा रेडियो भी ये चाहता है कि शिक्षा की दिशा में और शिक्षा की दशा सुधारने में जो अपनी सामुदायिक भूमिका हम निभा सके वो निभाएं। इसी सिलसिले में आज हम अलग अलग तरह के शिक्षकों से, शिक्षाविदों से बात कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपसे रूबरू हैं और आपसे बात कर पा रहे हैं। तो फोन पर रिकॉर्ड हो रहे इस कार्यक्रम में आपसे एक सवाल करना चाहते हैं हम। वो सवाल ये है कि जो ये इवोल्यूशन हुआ है अलग तरह का और जो हमारा पूरा परिदृश्य बदल रहा है, जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में आप शिक्षक की भूमिका को कैसे देखते हैं?
धन्यवाद पांडे जी, प्रश्न बहुत यथोचित है और वर्तमान समय के अनुकूल है
जी।
वर्तमान परिदृश्य में अगर हम शिक्षक की भूमिका की बात करें, बहुत तेजी से बदलता हुआ वैश्विक परिवेश है
जी।
जिसमें आधुनिकता, वैज्ञानिकता, बहुत ज्यादा व्यस्तता और अस्थिरता भी है
जी।
तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए शिक्षक की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है
जी।
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक से बढ़ के किसी का योगदान नहीं।
एग्जैक्टली।
इसमें एक अच्छा नागरिक बनाने से लेके बारी सारे चीजों से युक्त करना, कौशल युक्त बनाना, एक अच्छा नागरिक बनाना है। और उसको आज के परिप्रेक्ष्य में और चुनौती भरा इसलिए हो गया है क्योंकि जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि कई प्रकार के समस्याओं से हमारा देश गुजर रहा है, चाहे वो आतंकवाद हो या फिर अभी कोरोना वाला प्रकोप चल ही रहा है
जी जी।
तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर शिक्षक हमारा ज्यादा तैयार नहीं रहेगा तो बहुत बढ़िया शिक्षा देने में अक्षमता होगी
जी।
यहाँ पे शिक्षा से तात्पर्य सिर्फ कंटेंट मटेरियल ही देना नहीं है, शिक्षा मतलब उसको हर प्रकार से एक अच्छा नागरिक बनाना है
जी।
जैसे अगर आज के दौर में शिक्षक ICT के बारे में अगर नहीं जानता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके पेपर से लेके मोबाइल से लेके सारी चीजें आती हैं
जी,
तो आज के परिप्रेक्ष्य में ICT में शिक्षक को दक्ष होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से शिक्षा दे पाएगा और एक अच्छा नागरिक समाज को प्रदान कर पाएगा
जी।
क्योंकि वर्तमान समय में हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, यूनिवर्सल एजुकेशन की, तो आज के समय में जैसे अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, शिक्षक भी ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं
जी
तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें शिक्षकों को जरूर आ रही है, जिन्होंने पहले आईसीटी के बारे में ज्यादा नहीं जाना या कंप्यूटर मोबाइल का ज्यादा उपयोग नहीं करते थे। तो
जी
यहाँ पे मेरा मानना ये है कि अभी सारे विश्व में ये समस्या है, और यहाँ पे जहाँ कहीं भी कोई ज्ञान की चीज है उसको हम अपने यहाँ आसानी से ला सकते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन या यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करें तो इसमें शिक्षक की दक्षता का होना आवश्यक है, और शिक्षक को इसके लिए भी इस चुनौती को भी स्वीकार करके उसमें दक्ष होना आवश्यक हो गया है,
बिल्कुल बिल्कुल
और विद्यार्थी भी हमारे इसके लिए तैयार हो रहे हैं।
ठीक
थोड़ा प्रॉब्लम अवश्य है अभी वर्तमान समय में, रिमोट एरियाज में और दूसरे क्षेत्रों में थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन ये पहले दौर में इन सब चीजों को देखा जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि कुछ ही दिनों में ये सब इसमें पारंगत हो जाएंगे,
बिल्कुल। तो
तो इसमें भी शिक्षक।
डॉक्टर पोद्दार,
हाँ
आपने आपने जिस तरफ इशारा किया है वो हम समझ रहे हैं कि
जी
डिजिटलाइजेशन के इस दौर में शिक्षक को भी खुद को अपडेट करना ही होगा, तभी वो जो राष्ट्र निर्माण का उसका परम कर्तव्य है उसको को कर भी पाएगा। आपकी बात सुनते सुनते डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल मेरे मन में उमड़ पड़ा है, क्योंकि आपने जितनी सारी बातें कही वो उस बातचीत का
जी
सार मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगली पीढ़ी के निर्माण का जो माइलस्टोन है या एक सोर्स है वो शिक्षक ही है, वो
जी
बड़ा सोर्स है हम कह सकते हैं।
मैं असल में है ये थोड़ा सा इसमें इंडायरेक्ट कर रहा था यहाँ पे, कि वास्तव में अभी जो है शिक्षक के ऊपर में वास्तव में बहुत सारा प्रतिबंध है, बहुत प्रतिबंध, मतलब हम कह सकते हैं कि एक जकड़ा हुआ है, चाहे वो घर से हो, परिवार से हो, समाज से हो, चाहे प्राइवेट में नौकरी कर रहा हो या गवर्नमेंट में हो, मतलब जकड़ा हुआ है, कहने का मतलब बहुत सारी चीजें प्रतिबंधित हैं,
जी
लेकिन वर्तमान समय में मतलब उसको इस बंधन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन
जी जी
का जमाना है और काफी अस्थिरता है,
जी
इसमें कोई प्रतीक्षा करने के लिए रुकने वाला नहीं
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं हम
जी
सहमत हैं इससे। सर मैं
जी
तो मेरा यही सवाल इसी इसी संदर्भ में सवाल था, शब्द कुछ अलग है, वो सवाल इस तरह का है कि ये बहुत सारी परेशानियों का दौर जैसा दिखाई दे रहा है, ये आर्थिक रूप से
हाँ
परेशानियां हैं, स्वास्थ्यगत परेशानियां तो हैं ही,
हाँ
आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं इधर से उधर, वो जो मानसिक परेशानियां हैं वो अलग तरह की है। तो क्या
जी
क्या शिक्षक ये समाज में जो जितने लोग हैं उनकी
हाँ
जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक
हाँ
रखने में अपना कोई योगदान दे सकता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का शिक्षक हो चाहे सरकारी स्कूल का शिक्षक?
हाँ हाँ बिल्कुल दे सकता है, और ऐसा प्रयास किया भी जा रहा है,
जी।
लेकिन फिर भी मतलब जागरूक करने का जो प्रयास हमारे शिक्षक बंधु कर रहे हैं वो
जी
बहुत आवश्यक है, यानी कि मतलब ये है कि समाज के बाकी जो वर्ग हैं अलग अलग तरीके के, उसमें शिक्षक ही एक ऐसा समुदाय है जो इस बात को बहुत आसानी से कह सकता है और लोग उसको समझेंगे भी, क्योंकि
जी
हर एक जो पेरेंट है वो अपने बच्चे की बात सुनेगा, बच्चे के शिक्षक जो कह रहे हैं उसको सुनेगा, और हम अपनी बात बड़े आसानी से मतलब उनको समझा सकते हैं कि किस प्रकार से उनको रहना है, क्या करना है, किस प्रकार से मतलब वो इस समय को गुजार सकते हैं।
जी
जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो शासन प्रशासन का प्रयास है वो अपनी जगह पे है,
जी
लेकिन अगर शिक्षक इसमें अगर लगता है तो बहुत जल्दी हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को बहुत आसानी से समझ सकेंगे।
जी तो डॉक्टर पोद्दार, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, अर्पा रेडियो आपका शुक्रगुजार है, और फिर एक बार आज आज आपके दिन पर आपको बधाई, यानी शिक्षक दिवस की आपको खूब सारी बधाई।
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रेडियो अर्पा।
हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं आज अपने रेडियो पर, और हम बात कर रहे हैं खूब सारे शिक्षाविदों से, बहुत सारे ऊर्जावान शिक्षक शिक्षिका साथियों से। तो इसी कड़ी में हम पहुंच गए हैं राजनांदगांव जिले में, और राजनांदगांव जिले का एक विकासखंड है मोहला, और मोहला की एक हायर सेकेंडरी स्कूल है रेंगा कठेरा गांव में। वहां पर पदस्थ हैं एक बहुत ही ऊर्जावान, जिनका पूरा व्यक्तित्व ही प्रेरणादायक है, वैसे अंग्रेजी के व्याख्याता जनाब सईद कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्पा रेडियो में, और आपको खूब सारी
धन्यवाद
बधाई शिक्षक दिवस।
सर, आपको भी।
जय जोहार मित्रों।
तो सईद भाई, हम ये मौका चूकना नहीं चाहते, आज शिक्षक दिवस है और हम एक शिक्षक से बात कर रहे हैं जो शिक्षकीय कार्य को बहुत शिद्दत से करता है, और हम लगभग सभी अपने अतिथियों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले जितने भी दिनों से, जितने भी वर्षों से, जितने भी दशकों से आप इस पुनीत कार्य से जुड़े हैं, उस कार्य को करते रहने के दौरान आपने कैसा महसूस किया है?
जी योगेश जी, धन्यवाद, आपने मुझे सुनने के लिए तैयारी की। मित्र योगेश, शिक्षकीय कार्य में होना मेरे लिए एक गौरव की बात है और साथ ही एक जिम्मेदारी का भी विषय है। यू नो योगेश, इस समाज में बालक के सीखने की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है, नो डाउट। घर, परिवार, समाज में उसकी अनौपचारिक शिक्षा होती ही रहती है, परंतु जब औपचारिक शिक्षण की बात आती है तो वो एक उद्देश्य परक कार्य है, और इस पुनीत और उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो एक शिक्षक की है। और मैं इस पेशे में आया हूँ, बाय चॉइस आया हूँ, इसलिए मुझे ये सौभाग्य सा लगता है और गर्व का विषय है कि मैं एक शिक्षक हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें और भी छोटी छोटी हैं जो मुझे अपने जीवन काल में मुझे ये महसूस कराई कि आपको ये कार्य गौरव करने के लिए ही है। मैं गौरवान्वित होता हूँ अपनी संतुष्टि पे, बच्चों की आंखों की उस चमक के लिए जो किसी पैसे के बराबर नहीं हो सकते। मैं गौरवान्वित होता हूँ जब मेरे शिक्षक साथी जैसे आप और मेरे मित्र मुझे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मेरे गौरवान्वित होने का एक कारण और ये भी है कि जब विद्यार्थी मेरे सामने चुनौती प्रस्तुत करते हैं तो मुझे ये लगता है कि मैं एक टास्क मास्टर हूँ और वो मुझे बहुआयामी दक्षता प्राप्त करने के लिए बाध्य करते हैं। मेरे गौरवान्वित होने का एक कारण ये भी है कि जब मेरे साथी या छात्र किसी दुखद या विकट स्थिति में होते हैं तो मैं वो कंधा होता हूँ जिसमें वो सुकून महसूस करते हैं। योगेश जी, आज इस घृणा, नफरत और नकारात्मकता की दुनिया में सहानुभूति तथा परानुभूति जैसी आवश्यक समाज सुधार की जो भावनाएं हैं वो कम होती जा रही है, लेकिन यही वो पेशा है जो हमें हमेशा इन भावनाओं से जोड़ता है और लोगों को जोड़ने के लिए हमें सिखाता भी है। अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें अगर मैं स्कूल में अनुपस्थित भी हो जाऊं तो जब बच्चे मुझे मिस करते हैं और याद करते हैं तो मुझे गौरवान्वित सा महसूस होता है। मेरी जिम्मेदारी न केवल छात्र के सर्वांगीण विकास की बल्कि समाज, राष्ट्र, पूरे दुनिया के निर्माण की है। इसलिए योगेश सर, ऐसे बहुआयामी समाज और राष्ट्र के निर्माण के पेशे में होने का तात्पर्य ही ये है, ईश्वर ने मुझ पर महान कृपा रखी है और वो इस कार्य के लिए मुझे चुना है। अतः मैं ये चाहता हूँ कि मैं सदैव इस पेशे के लिए गर्व महसूस करूँ और गौरवान्वित होता रहूँ। ये मेरा कहना है, मेरा मानना है।
तो बहुत 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 सारे अलग अलग प्रकार के कार्य हम करते हैं, पूरी दुनिया में खूब सारे अलग अलग प्रकार के पेशे हैं, और उसमें एक एक कॉमन बात लोगों के रिफ्लेक्शन में दिखाई देती है, कॉमनली दिखाई देती है, वो ये है कि लोगों को अपने काम को करने में वो संतुष्टि महसूस नहीं होती। लेकिन सईद जी, आपसे हम बात करके ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप शिक्षक होने के पल पल को एंजॉय करते हैं, पल पल का मजा लेते हैं, और वो आत्मिक संतुष्टि जिसे कहते हैं हम, वो आप पूरे 24 घंटे महसूस करते हैं शायद, और जितने भी वर्षों से आप इस कार्य से जुड़े हैं आप लगातार वो महसूस करते ही जा रहे हैं। ये बहुत बहुत सौभाग्य का मसला है कि हमारे हमारे इलाके में ऐसा एक शिक्षक मौजूद है जिसे अपने कार्य को करने में बहुत मजा आता है। तो एक छोटा सा सवाल इसी से उपजता है मन में कि क्या ये आत्मसंतुष्टि, क्या ये आत्मसंतुष्टि का भाव, या ये समाज को कुछ दे पाने की जो बात है शिक्षकीय कार्य की, वो उसके बल पे आप क्या कोई हमें ऐसा कोई कारण बता सकते हैं कि लोगों को क्यों शिक्षक बनना चाहिए?
सबसे प्रथम कारण तो वो यही है सर, ये ही एक ऐसा पेशा है जो ना सिर्फ अन्य पेशों को पैदा करता है बल्कि उनको उनका पोषण भी करता है। आज की इस विपरीत परिस्थिति में जबकि समाज में बहुत सारी चीजें नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रही है, विनाश की ओर जा रही है, तो शिक्षक, मैं ये सोचता हूँ कि केवल शिक्षक ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है, ऐसा तंत्र हो सकता है जो इस समाज को वापस उस ओर ले जा सके जिधर केवल सकारात्मकता हो, रचनात्मकता हो और निर्माण हो। इसलिए आज जितने अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे विचारक लोग हैं, उन लोगों को इस पेशे में आना चाहिए ताकि इस पेशे में ऐसे लोग आएं जो उत्कृष्ट हों अपने क्षेत्र में और अपने विचारों से और अपने उत्कृष्ट अकादमिक ज्ञान से एक नई पीढ़ी तैयार करें और हम एक जैसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं उस समाज का निर्माण करें और हम उस समाज में रहें और महसूस करें कि जब हम उधर जाते हैं जिधर सकारात्मकता हो, रचनात्मकता हो, तो कैसा महसूस होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि समाज में अच्छे लोगों को, अच्छी सोच वालों को, लोगों को पैसे की बजाय एक एकदम प्रोफेशनल थिंकिंग से हटके इस निर्माण की दिशा में आना बहुत आवश्यक है। शायद इसीलिए अच्छे अच्छे लोगों को भी इसमें जुड़ना चाहिए। हमारे समाज में आज जरूर ऐसा है कि लोग बड़ी बड़ी जॉब जिसको तथाकथित रूप से हम बड़ा मानते हैं, यूपीएससी की जॉब हो या मल्टीनेशनल में काम करना हो, अभी एक ऐसी सोच बन गई है कि यही कुछ अच्छी जॉब्स है। लेकिन अगर आप इसके मर्म पे जाएं, उपचार के मर्म पे जाएं, तो महसूस करेंगे कि देयर इज नो एनी सेकंड जॉब दैट इज अप टू द लेवल ऑफ टीचिंग। इसलिए टीचिंग जॉब में लोगों की प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो आए अच्छे लोगों की।
अमेजिंग। तो रचनात्मकता और सकारात्मकता का संदेश देते हुए आप थे सईद कुरैशी सर, और सईद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है अरपा रेडियो, आपने इस मौके पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए, और पुनः एक बार भविष्य की खूब सारी शुभकामनाओं के साथ आपको शिक्षक दिवस की भी शुभकामनाएं।
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रेडियो अरपा।
हम शिक्षक दिवस पर बहुत सारे शिक्षक साथियों से बात कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम बात करते हैं श्रीमती माया मिश्रा मैडम से, जो विज्ञान की व्याख्याता हैं और विकासखंड बिलहा के एक हाई स्कूल में पदस्थ हैं। माया मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरपा रेडियो में और आपको शिक्षक दिवस की खूब सारी बधाई।
सर आपको भी बहुत बहुत बधाइयां शिक्षक दिवस की। नमस्कार।
जी नमस्कार। मैडम, आज हम बहुत सारे शिक्षकों से उनके ही दिवस पर बात कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक सवाल जो हम सबके सामने रख रहे हैं वही आपके सामने भी रखेंगे कि आप कैसा महसूस करती हैं जब आप खुद को देखती हैं एक शिक्षक के बतौर।
मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ सर, मुझे बहुत पसंद है शिक्षकीय कार्य करना और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। प्राथमिक शिक्षा भी मैंने बच्चों को पढ़ाई, मिडिल स्तर भी पढ़ाया और अभी हाई स्कूल में रखा था पद पर कार्यरत हूँ।
जी।
तो प्राथमिक शिक्षा में जब मैं पढ़ाती थी छोटे बच्चों को तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे बच्चे, बहुत प्यारे, उनकी मतलब उनकी बातें है, उनका खेलना
जी,
उनकी भावनाएं, वो सब समझने का हमको अवसर मिलता है। कैसे प्यार करना है बच्चों को, वो हमको कैसे प्यार करते हैं, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। कैसे छोटे बच्चे यदि गलती कर रहे हैं तो हम उनको समझाते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। कई बार क्या होता है अपन समझ नहीं पाते, बच्चों को क्लास से बाहर कर देते हैं। उस समय लगता है एक छोटा एक बच्चा था, क्लास फोर्थ में बता रही हूँ, छोटा सा संस्मरण है
जी, जी, जी।
तो मैं उसको क्लास से बाहर निकाल, बहुत प्यारा और वर्क करके निकलाया, मैं उसको बाहर निकाल दी। फिर बाद में बहुत देर वो खड़ा रहा है, उसके दोस्त ने मुझे बताया कि इस बच्चे को मैडम ब्लड कैंसर है, तो उसका ब्लड बदला जाता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत घर में आकर बहुत दुखी हूँ, इतना रोई थी कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। यानी कभी कभी क्या करना चाहिए, उनकी भावनाओं को अपने को समझना चाहिए, समझने के बाद उन्हें क्षम्य कर देना चाहिए
जी।
तो ये मेरे को इतना अनुभव हुआ, बहुत सारी चीजें मुझे ज्ञात हुई कि कैसे अपने को एक शिक्षक की मर्यादा बनाते हुए कार्य करना चाहिए। इसके बाद मैं मिडिल स्तर पर आई, मिडिल स्तर में भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, उसके बाद मैं हाई स्कूल स्तर पे मेरा चयन हुआ, तो हाई स्कूल स्तर पे भी मुझे बच्चे ऐसा लगा जैसे फ्रेंडली हम उनसे बिहेव कर रहे हैं। तो एक शिक्षक मैं मानती हूँ सर कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, तो अपन ये कहते हैं एक शिक्षक को एक दोस्त की भांति भी ट्रीट करना चाहिए, एक माता पिता की तरह भी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उनके अभिभावक हमको सौंप देते हैं तो हम उनके 10 से 4 उनके माता पिता की तरह हो जाते हैं।
बिल्कुल,
तो हम उनको अच्छी बातें सिखाएं, है यदि वो गलतियां कर रहे हैं तो उनको सुधारने का मौका दें, ऐसा अवॉइड ना करें, उनको नेग्लेक्ट ना करें, और उन बच्चों को मतलब इतनी अच्छी शिक्षा दे। शिक्षक शब्द का ही तात्पर्य है कि शिखर तक ले जाने वाला, क्षम करने वाला और उसकी हर कमजोरी को दूर करने वाला। तो मैं उसी बातों को फॉलो करते हुए अपने प्यारे बच्चों को अपने दोस्त की तरह, माँ बाप की तरह और हर प्रकार से अपना अनुभव शेयर करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा ऊंचाइयों पे जाए और इस देश का नाम रोशन करे, अपने माता पिता, अपने अभिभावक और अपने गुरु, यानी अपने को ऐसा काम करना है कि वो जहां भी हम मिले हमारा बच्चा हमको सम्मान दे हमारे कर्तव्यों के आधार पे।
बिल्कुल बिल्कुल, तो शिखर पर ले जाने वाला, क्षमा कर देने वाला और कमजोरियों को दूर करने वाला ही शिक्षक होता है। ये बहुत बहुत अनमोल बातें हैं माया जी, आपका खूब सारा धन्यवाद ज्ञापित करता है अर्पा रेडियो, और पुनः एक बार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आपसे ये उम्मीद करते हुए कि जो जिस संकल्प के साथ आप ये काम कर रही हैं उस पर उत्तरोत्तर प्रगति करें, अर्पा रेडियो पुनः एक बार आपको शिक्षक दिवस की खूब सारी बधाई देता है।
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रेडियो अर्पा।
श्रोताओं, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के दिन जैसा कि आप आज सुबह से सुनते चले आ रहे हैं कि हम अपने अपने राज्य के अलग अलग शिक्षाविदों और शिक्षकों से बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस का ये मौका हम चूकना नहीं चाहते। अर्पा रेडियो का सरोकार भी है शिक्षा का प्रचार प्रसार, तो इसी कड़ी में हम बीजापुर जिले के उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य के रूप में पदस्थ अमित गंडारला जी से आपको मिलवाते हैं। और अमित जी, आपका खूब स्वागत है अर्पा रेडियो में और आपको खूब सारी बधाई शिक्षक दिवस।
धन्यवाद देवी जी।
जी अमित जी, हम अपने सभी अतिथियों से एक सवाल कर रहे हैं आज, और हम सभी शिक्षकों से ये जानना चाहते हैं कि उन्हें शिक्षक होकर कैसा महसूस होता है।
मुझे शिक्षक बनकर कैसा महसूस होता है, इस ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा, ये अपने आप में मुझे सौभाग्य महसूस हो रहा है। मैं स्कूल शिक्षा विभाग के तीनों पदों पर सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के पद पर काम कर चुका हूँ। 2006 में सहायक शिक्षक के तौर पर मैंने शिक्षा विभाग में कदम रखा था, और जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे एक शिक्षक थे श्री एन चलापति सर, मैं उनसे बहुत प्रेरित था और बनना तो मुझे उन जैसा ही था, तो शिक्षक बनना ये बात उस वक्त ही तय हो गई थी। और हाँ, जब मैं इस पद पर 2006 में ज्वाइन किया था तब ये पद उतनी गरिमामयी थी नहीं, तो मेरे परिवार में और मेरे भाई बहन ये सारे इतने खुश नहीं थे, परंतु आज सभी को मुझ पर गर्व है। इस क्षेत्र में आने के बाद जिस सेवा भाव से मैंने काम किया और जो कुछ भी किया, मैं संतुष्ट हूँ और सभी पूरी फैमिली सभी संतुष्ट है। और एक और वजह है जो शुरू से मुझे परेशान करती थी, चूंकि मैं बस्तर से आता हूँ और यहाँ पर यहाँ के जो मूल लोग हैं वो लोग आम इंसान की तरह पहले से ही शर्ट पैंट नहीं पहनते, बहुत अच्छी हिंदी बोलते नहीं, तो जब बसों में जब मैं किशोरावस्था में था और बसों में सफर करते थे तो उनके साथ जो व्यवहार होता था उससे मुझे बहुत पीड़ा होती थी। और जिस क्षेत्र में मैं हूँ यहाँ पर काफी लोग मुख्य धारा से भटके हुए लोग भी हैं, और जिसके दुष्परिणाम से हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, जो बहुत करीब से मैंने देखा भी है। और बस्तर की छवि भी कुछ ऐसी थी बहुत जगहों में कि एक मानसिकता थी कि यहाँ के लोग कुछ पिछड़े से हैं, तो इन सब बातों से बहुत कुंठित था मैं। और उस कुंठा का समाधान जब बैठकर मैं सोचता था तो छोटे छोटे बहुत समाधान सोचते थे, लेकिन अगर कुछ स्थायी समाधान मुझे समझ में आया बहुत समय के बाद, बहुत सोचने के बाद, तो वो ये थी कि इन सबका समाधान शिक्षा ही है। तो ये सब चीजें जब कम उम्र में मेरे मन में आ गई थी तो बनना शिक्षक ही था। और इन सब चीजों के साथ शिक्षक बनने के बाद जब इतना लंबा सफर लगभग 15 साल के आसपास का वक्त गुजर चुका है, आज शिक्षक के तौर पर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ कि मैं शिक्षक की पेशे से जुड़ा हूँ और शिक्षक हूँ।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और वो एक एलिमेंट आपने हमसे साझा किया जो आपको प्रेरित कर पाया शिक्षक बनने के लिए। और शिक्षकीय कार्य में तो जैसा कि अमित जी हमें बता रहे थे कि शिक्षकीय कार्य में तो पूरी तरह संतोष का ही बोलबाला है, संतुष्टि की भरमार। तो अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम बिलासपुर में हैं और आप बीजापुर से हमसे जुड़े, हमसे बात कर रहे हैं। इस मौके पर आपके अंदर के शिक्षक को हम फिर एक बार सलाम करते हैं और भविष्य की खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको। आपका बहुत बहुत आभार।
अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक शिक्षक दिवस पर शिक्षकों की बात, प्रस्तुति थी योगेश पांडे की। इस कार्यक्रम का प्रसारण अर्पा रेडियो से किया गया।
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रेडियो अर्पा।